एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम जिस उपन्यास की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं वो है हारुकी मुराकामी का काफी मशहूर और शायद सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला काम नॉर्वेजियन वुड।
हाँ, नॉर्वेजियन वुड। मुराकामी तो खैर आज के सबसे जाने माने जापानी लेखकों में से हैं ही।
बिल्कुल, और उनकी खास पहचान है उनकी शैली, जिसमें अक्सर हकीकत के साथ कुछ अजीब जादुई या कह लें अति यथार्थवादी तत्व घुल मिल जाते हैं, है ना? मतलब असल दुनिया के साथ कुछ सपनों जैसा।
हाँ हाँ बिल्कुल, उनकी कहानियों में अक्सर वो पश्चिमी पॉप कल्चर, खासकर म्यूजिक और लिटरेचर का जिक्र मिलेगा, लेकिन दिल मतलब एसेंस वो जापानी ही रहता है।
और किरदार भी वैसे ही होते हैं अक्सर, थोड़े खोए खोए से नौजवान,
हाँ
है ना,
बिल्कुल,
रहस्यमयी लड़कियां और माहौल में एक उदासी सी, किसी चीज की खो जाने का एहसास।
हाँ वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग। लेकिन नॉर्वेजियन वुड जो 1987 में आई थी वो इस मायने में थोड़ी अलग है।
हाँ, वही मैं कह रही थी, इसमें वो जादुई यथार्थवाद लगभग नहीं के बराबर है। ये कहानी ज्यादा सीधी है, ज्यादा यथार्थवादी और पूरी तरह जज्बातों के उधेड़ बुन पर टिकी है।
बिल्कुल, ये एक नौजवान के बड़े होने की कहानी है, जिसे अंग्रेजी में कमिंग ऑफ एज कहते हैं, पर ये बहुत दर्द भरी, यादों में डूबी हुई और दिल को छूने वाली कहानी है।
और जापान में तो इसने जैसे धूम मचा दी थी, खासकर युवाओं के बीच। कहते हैं इसी किताब ने मुराकामी को रातों रात एक तरह से सुपरस्टार बना दिया था।
हाँ, कल्ट लेखक से सीधे कल्चरल फिनोमिनन बन गए थे वो। और कहानी का वक्त भी दिलचस्प है, 1960s के दशक का आखिरी दौर, टोक्यो।
हाँ, वो यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का जमाना था, दुनिया भर में एक उथल पुथल सी मची हुई थी।
पर ये उपन्यास उन बाहरी हंगामों से ज्यादा किरदारों के अंदरूनी तूफानों पर फोकस करता है। और हाँ, इसका नाम नॉर्वेजियन वुड, बीटल्स का वो मशहूर गाना। किरदारों के जज्बाती सफर को समझेंगे।
और इसके जो गहरे सवाल है, यादें क्या करती हैं हमारे साथ, दुख और नुकसान से कैसे निपटा जाए और जिंदगी के मुश्किल मोड़ों पर रास्ता कैसे चुना जाए, इन सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी के सफर से।
कहानी की शुरुआत ही, जैसे आपने कहा, यादों की गली से होती है। हमारा कथावाचक तोरू वातनाबे 37 साल का है और जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर उतरे एक जहाज में बैठा है। तभी बैकग्राउंड में बीटल्स का नॉर्वेजियन वुड बजता है और बस वो धुन उसे खींचकर लगभग 20 साल पीछे ले जाती है, उसके कॉलेज के दिनों में, मतलब 1968-70 के आसपास। तो पूरी कहानी असल में एक लंबी उदासी में लिपटी हुई याद है, एक फ्लैशबैक।
और इस याद के बिल्कुल केंद्र में है एक तिकड़ी हाई स्कूल के दिनों की, तोरू, उसका सबसे जिगरी दोस्त किजुकी और किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको।
हाँ, ये तीनों जैसे एक अलग ही दुनिया में रहते थे, एक अटूट बंधन। तोरू खुद को उस दुनिया का हिस्सा भी मानता था और थोड़ा मतलब बाहर का पहलेदार जैसा भी महसूस करता था।
लेकिन ये तस्वीर एकदम से टूट जाती है।
हाँ, एक झटके में किजुकी महज 17 साल की उम्र में अचानक खुदकुशी कर लेता है, बिना किसी वजह, बिना कोई निशान छोड़े।
ओह, ये तो बहुत शॉकिंग है, और कम उम्र में।
हाँ, और ये घटना तोरू और नाओको की जिंदगियों में एक भूचाल ला देती है, एक ऐसा घाव जो शायद कभी भरेगा ही नहीं। यहीं से कहानी का असली दर्द, वो दुख की परतें खुलनी शुरू होती हैं।
जाहिर है किजुकी की मौत का असर बहुत गहरा होता होगा। तोरो और नाओको जो पहले एक दोस्त के जरिए जुड़े थे, अब एक साझा दुख से जुड़ते हैं, लेकिन शायद इस दुख में वो और भी अकेले पड़ जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने अपने दुख में अलग थलग हो जाते हैं। तोरू जैसे उस शहर से, उन यादों से भागना चाहता है और टोक्यो की यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला जाता है।
और बाहर की दुनिया में तो छात्र आंदोलन का शोर है, जैसा हमने कहा, पर तोरू अपने अंदर की खामोशी और दुख में ही गुम है। उसे वो बाहरी उथल पुथल जैसे छूती ही नहीं।
नहीं छूती। फिर करीब एक साल बाद टोक्यो में एक लोकल ट्रेन में अचानक तोरू और नाओको की मुलाकात हो जाती है।
अच्छा।
हाँ, ये एक अजीब सा मिलना है, कोई खुशी वाला नहीं बल्कि एक खामोश पहचान वाला। इसके बाद वो हर रविवार को मिलने लगते हैं, घंटों टोक्यो की सड़कों पर यूं ही साथ चलते रहते हैं।
बातें कम होती होंगी।
बहुत कम, ज्यादातर खामोशी। ऐसा लगता है जैसे उनका वो अनकहा दुख ही उनके बीच का पुल बन गया है। उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून है।
ये रिश्ता बड़ा नाजुक सा लगता है, दोस्ती और शायद उससे कुछ ज्यादा के बीच झूलता हुआ।
हाँ बिल्कुल। और फिर आता है नाओको का 20वां जन्मदिन। उस रात भावनाओं के बोझ तले दबे तोरू और नाओको के बीच जिस्मानी रिश्ता बन जाता है। पर यह कोई जुनून का पल नहीं है, बल्कि यह उनके गहरे अकेलेपन और साझा दुख का एक चरम बिंदु जैसा लगता है, जैसे दो टूटे हुए इंसान एक पल के लिए एक दूसरे में पनाह ढूंढ रहे हों।
लेकिन इसका नतीजा क्या होता है?
मगर इस रात के बाद नाव को जैसे और टूट जाती है, उसकी मानसिक हालत तेजी से बिगड़ती है, वो अचानक गायब हो जाती है।
गायब मतलब?
मतलब तोरू के लिए बस एक खत छोड़कर कि वो ठीक होने के लिए कहीं दूर जा रही है। पहाड़ों में एक सेहतगाह है, अमी हॉस्पिटल नाम की जगह। तोरू की दुनिया में फिर एक खालीपन।
और यही कहानी में एक नया मोड़ आता है ना, एक नया किरदार जो नाओको से बिल्कुल अलग है, मिडोरी कोबायाशी।
हाँ, मिडोरी। अगर नाओको अतीत की खामोशी, दुख और नाजुकियत का प्रतीक है, खूबसूरत लेकिन जैसे कांच की बनी हुई, हमेशा टूटने के डर में जीने वाली।
तो मिडोरी जैसे जिंदगी का धमाका है।
सही कहा।
वो तोरू की क्लासमेट है, बातूनी, एकदम बिंदास, जिंदा दिल, थोड़ी अजीब भी।
हाँ बिल्कुल, अपनी परेशानियां उसकी भी कम नहीं है। बीमार पिता की देखभाल है, घर की दिक्कतें हैं, लेकिन उसमें लड़ने का जज्बा है, जीने की एक जबरदस्त ताकत है। वो नाओको की तरह अतीत में नहीं जीती, वो आज में जीती है। एकदम मुंहफट, जो दिल में है वो जुबान पर।
तो तोरू और मिडोरी के बीच फिर एक अनोखी दोस्ती पनपने लगती है।
हाँ, वो साथ खाते पीते हैं, अजीबोगरीब बातें करते हैं, मौत, सेक्स, ख्वाहिशें, ऐसी बातें जो तोरू ने शायद पहले कभी किसी से इतनी खुलकर नहीं की होंगी।
तो मिडोरी जैसे उसे जिंदगी के उस पहलू से मिलाती है जो नाओको की दुनिया से एकदम अलग है।
यहीं से तोरू का वो असली कश्मकश, वो द्वंद्व शुरू होता है ना?
हाँ बिल्कुल, वो जैसे दो नावों पर सवार हो जाता है। एक तरफ नाओको के लिए उसकी वफादारी, उसका इंतजार, वो खत जो वो उसे लिखता रहता है, ये सब अतीत और जिम्मेदारी से जुड़ा है। और दूसरी तरफ मिडोरी है जो उसे हंसाती है, चौंकाती है, जिंदगी की तरफ खींचती है, ये भविष्य की तरफ इशारा करती है, शायद एक सेहतमंद रिश्ते की उम्मीद जगाती है।
और तोरू का दिल और दिमाग इसी कश्मकश में फंसा है। क्या उसे नाओको के दुखद अतीत के साथ जुड़े रहना चाहिए, या मिडोरी के साथ एक नई जिंदा दिल राह चुननी चाहिए? ये उपन्यास का एक केंद्रीय सवाल बन जाता है।
और इस कश्मकश में कुछ और किरदार भी हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे नागासावा, तोरू का सीनियर।
हाँ, नागासावा बहुत स्मार्ट, पढ़ाकू, आकर्षक, लेकिन रिश्तों को लेकर बेहद लापरवाह और मतलब ही कह सकते हैं। वो तोरू का दोस्त है पर नैतिक तौर पर बिल्कुल उलट।
वो जैसे दुनियादारी और एक तरह के भावनात्मक खोखलेपन का प्रतीक है। दिलचस्प है कि उसे द ग्रेट गैट्सबी बहुत पसंद है, शायद ये उसके किरदार के बारे में कुछ कहता है।
हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और एक बहुत ही अहम किरदार है रेको इशिदा।
रेको, वो अमी हॉस्टल में नाओको की रूममेट है, है ना? उम्र में बड़ी, एक समझदार और अनुभवी महिला।
हाँ, वो खुद भी जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुकी हैं। एक प्रतिभाशाली पियानिस्ट थीं जिनका करियर मानसिक आघात की वजह से छूट गया। वो नाको के लिए तो एक सहारा है ही, बाद में तोरू के लिए भी एक गाइड और दोस्त की तरह बन जाती हैं। वो जैसे समझदारी, ठहराव और दुख से उभरने की संभावना का प्रतीक हैं।
उनका किरदार काफी महत्वपूर्ण लगता है, और नागासावा की गर्लफ्रेंड हात्सुमी का जिक्र भी जरूरी है।
हाँ, हात्सुमी एक अच्छी सुलझी हुई लड़की जो नागासावा की बेपरवाही का शिकार होती है। बाद में जब नागासावा उसे छोड़ देता है और वो किसी और से शादी कर लेती है, तो कुछ साल बाद वो भी खुदकुशी कर लेती है।
ओह, एक और त्रासदी।
हाँ, उसकी मौत जैसे कहानी में एक और परत जोड़ती है। जिंदगी कितनी नाजुक है और भावनात्मक चोटों का असर कितना गहरा, कितना विनाशकारी हो सकता है। तोरू पर इस खबर का भी बहुत असर होता है।
कहानी जैसे और उलझती और गहरी होती जाती है।
हाँ, कहानी आगे बढ़ती है। तोरू नाओको से मिलने अमी हॉस्टल जाता है। वो जगह एकदम शांत, दुनिया से कटी हुई। वहां उसकी मुलाकात रेको से होती है। वो नाओको के साथ वक्त बिताता है।
क्या वो वहां किज़ुकी के बारे में बात कर पाते हैं?
हाँ, शायद पहली बार वो किज़ुकी की मौत और अपने साझा अतीत के बारे में खुलकर बात कर पाते हैं। तोरू को नाओको की हालत की गंभीरता का अंदाजा होता है कि वो कितनी नाजुक हो चुकी है। ये मुलाकात सुकून और दर्द दोनों देती है। वो उससे वादा करके लौटता है कि वो उसका इंतजार करेगा।
लेकिन टोक्यो लौटकर वो फिर मिडोरी की कशिश महसूस करता है।
हाँ, और मिडोरी अब उसे ज्यादा की उम्मीद करने लगी है। वो चाहती है कि तोरू सिर्फ नाओको की याद में न खोया रहे, बल्कि उसके साथ वर्तमान में मौजूद रहे। वो तोरू को उसकी निष्क्रियता के लिए टोकती है, उसे एक फैसला लेने पर मजबूर करती है।
लेकिन तोरू जैसे जम गया है, वो कोई चुनाव नहीं कर पा रहा।
हाँ, और इस चैप्टर में वो मिडोरी को भी दुख पहुंचाता है। ये कश्मकश और गहरी होती जाती है। फिर वो खबर आती है जो तोरू की दुनिया को पूरी तरह बिखेर देती है।
नाओको की।
हाँ, देर गर्मियों में रेको का खत आता है। नाओको ने खुदकुशी कर ली है। किज़ुकी के बाद अब नाओको भी चली गई।
ओ नहीं, ये तो तोरु के लिए बर्दाश्त से बाहर होगा।
बिल्कुल, वो पूरी तरह टूट जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है और लगभग एक महीने तक बिना किसी मंजिल के पूरे जापान में भटकता रहता है। कभी बीच पर सोता है, कभी सस्ते होटलों में।
वो अपने दुख को जैसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा।
हाँ, उससे भाग रहा है, पूरी तरह से खोया हुआ, दुनिया से कटा हुआ। वो बाद में सोचता है कि वो एक ऐसी जगह था जहां उसका कोई नाम, कोई पहचान, कोई अतीत या भविष्य नहीं था, बस एक खालीपन। ये दुख का वो चरम बिंदु है जहां इंसान अपना वजूद ही भूल जाता है।
यहाँ मुराकामी दुख और हानि को बहुत गहराई से दिखाते हैं। ये सिर्फ रोना धोना नहीं है, बल्कि ये इंसान को अंदर तक कैसे खोखला कर सकता है, उसे दुनिया से कैसे काट सकता है।
बिल्कुल, और यही उपन्यास के मुख्य विषय और उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला तो यादों का जाल।
हाँ, ये पूरी कहानी ही तो याद है। मुराकामी ये दिखाते हैं कि यादें सिर्फ गुजरे हुए कल की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि वो जिंदा रहती हैं, आज पर साया डालती हैं, नाओको जैसे अतीत में ही कैद होकर रह जाती हैं।
और तोरु का सफर इस अतीत से लड़ने का नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ना सीखने का है। यादों को मिटाया नहीं जा सकता, पर उनके साथ जीना सीखना पड़ता है।
और इसी से जुड़ा है प्यार, नुकसान और मातम का विषय। कहानी बताती है कि प्यार और नुकसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, खासकर तोरु और नाओको के रिश्ते में।
हाँ, उनका प्यार उनके साझा दुख से ही जन्मा और उसी में उलझा रहा। उपन्यास मातम मनाने की प्रक्रिया को बहुत बारीकी से दिखाता है, साथ ही प्यार के अलग अलग रंग भी। नाओको का वो दुख भरा आदर्शवादी प्यार और मिडोरी का जिंदा दिल मुश्किलों भरा पर हकीकत के करीब वाला प्यार।
और एक बहुत बड़ा सवाल जो कहानी उठाती है, मौत के साये में जिंदगी कैसे चुने। मौत कहानी में हर तरफ मौजूद है। किज़ुकी, नाओको की बहन, हत्सुमी और फिर नाओको। ऐसा लगता है जैसे मौत जिंदगी का पीछा कर रही है।
हाँ, तो सवाल ये उठता है कि जब मौत इतनी करीब हो तो जीने का मतलब क्या है, कैसे जिंदगी को हाँ कहें। तोरु की पूरी यात्रा एक तरह से मरने वालों की दुनिया नाओको और जीने वालों की दुनिया मिदोरी के बीच चुनाव करने की कहानी है।
वो मुराकामी का मशहूर वाक्य याद आता है, मौत जिंदगी का उल्टा नहीं बल्कि उसका ही एक हिस्सा है।
बिल्कुल, और मानसिक बीमारी का चित्रण भी बहुत संजीदा है। नाओको की हालत को किसी रोमांटिक अंदाज में नहीं, बल्कि एक तकलीफ दे, अलग थलग कर देने वाली सच्चाई की तरह दिखाया गया है।
हाँ, अमी हॉस्टल एक पनाहगाह तो है, पर वहाँ का अकेलापन भी गहरा है। ये दिखाता है कि दूसरों से जुड़ना, अपनी बात कहना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कोई अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा हो, और ये भी कि प्यार हमेशा हर जख्म नहीं भर सकता।
बिल्कुल, तो कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं। तोरु भटकने के बाद आखिरकार टोक्यो लौटता है। वो अब भी खाली है पर जिंदा है।
फिर रेको उससे मिलने आती है।
हाँ, कुछ वक्त बाद। ये एक अहम मोड़ है। रेको ने सालों बाद अमीर हॉस्टल छोड़कर बाहर की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया है। वो दोनों एक रात साथ बिताते हैं, बातें करते हैं। रेको गिटार बजाती है,
बीटल्स के गाने भी।
हाँ हाँ, बीटल्स के गाने भी। नाओको को याद करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। ये रात तोरु के लिए जैसे कथारसिस, एक शुद्धिकरण का काम करती है। उसे पहली बार नाओको का ठीक से मातम मनाने और शायद उसे अलविदा कहने की हिम्मत मिलती है।
तो रेको का किरदार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है।
हाँ, रेको की हिम्मत, उसका जिंदगी को दोबारा अपनाने का फैसला तोरु को भी जैसे एक राह दिखाता है। और फिर आता है उपन्यास का आखिरी सीन,
वो फोन कॉल वाला।
हाँ, तोरु एक पब्लिक फोन बूथ में है। वो मिडोरी को फोन कर रहा है। वो उसे कहता है कि उसने उसे चुना है, कि वो उसे चाहता है, उसे मिडोरी की जरूरत है। वो जैसे आखिरकार एक फैसला ले पाया है।
लेकिन जब मिडोरी पूछती है तुम अभी कहाँ हो,
तो तोरु क्यारो तरफ देखता है, पर उसे कोई जवाब नहीं सूझता। वो जैसे कहीं नहीं है, एक बीच की जगह पर, एक संक्रमण के पल में। अतीत पीछे छूट रहा है, पर भविष्य अभी पूरी तरह आया नहीं है।
अंत खुला हुआ है, पर उसमें उम्मीद की एक किरण है। ये इस बात का इशारा है कि उसने मिडोरी के जरिए जिंदगी की मुश्किल उलझीवी पर जिंदा सच्चाई को चुन लिया है।
हाँ, यंत्र बहुत ताकतवर है। ये कोई परिकथा वाला अंत नहीं है जहां सब ठीक हो जाता है, बल्कि ये दिखाता है कि दुख के बाद भी जिंदगी चलती है और चुनाव करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
कथा शैली की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। तोरु अपनी कहानी खुद सुना रहा है, वो भी कई साल बाद। इससे पूरी कहानी पर यादों की एक धुंध छाई रहती है, एक मीठी सी उदासी।
हाँ, और भाषा सीधी सादी है, पर जज्बात बहुत गहरे हैं। कुछ प्रतीक भी हैं जो कहानी को और गहरा बनाते हैं, जैसे नॉर्वेजियन वुड गाना खुद, जो यादों और नुकसान का प्रतीक बन जाता है,
और वो कुएं जिनका जिक्र आता है।
हाँ, वो कुएं जो शायद अनजाने डर, दिवाक के अंधेरे कोनों या मौत के खिंचाव का प्रतीक हैं। और वो खत जो तोरू और नौको एक दूसरे को लिखते हैं, वो दूरी और जुड़ाव बनाए रखने की कोशिश का प्रतीक हैं।
कुल मिला के ये उपन्यास एक गहरा भावनात्मक असर छोड़ता है। उदासी है, पर हार मान लेने की भावना नहीं, बल्कि चुपचाप सहते हुए जी जाने की बात है।
हाँ, पाठक किरदारों के दर्द को महसूस करते हैं। ये जिंदगी की कड़वी मीठी सच्चाई दिखाता है, जहां आसान जवाब नहीं मिलते। कुछ जख्म शायद कभी नहीं भरते, अतीत के साए साथ चलते हैं, पर फिर भी ये एक उम्मीद देता है कि भयानक नुकसान के बाद भी जिंदगी को चुनना, प्यार करना और आगे बढ़ना मुमकिन है।
तो इस कहानी से हम शायद यही सीखते हैं कि दुख और नुकसान जिंदगी का हिस्सा हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता, लेकिन यादों के बोझ तले दबने के बजाय उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है।
और ये कि जिंदगी को चुनना, उसकी सारी अनिश्चितताओं और तकलीफों के बावजूद, अपने आप में एक हिम्मत का काम है। ये हमें इंसान होने के गहरे मतलब और उसकी खूबसूरती से रूबरू कराता है।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।